समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। रोज की तरह आज भी देश विदेश के समाचार आपको बताएंगे, क्षेत्रीय हमारे संवाददाता क्या लेकर आए हैं वो भी आपको बताएंगे, खेल जगत व्यापार जगत की हलचल रहेगी, तो बने रहें हमारे साथ। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो प्रियंका, हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लवली लिसनर्स ट्यून टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट प्रियंका अरोड़ा, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Greek counterpart Kyriakos Mitsotakis in New Delhi.
सरकार ने किसान नेताओं को पांचवें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया, पंजाब सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा।
India and China hold 21st round of core commander level meeting for restoration of peace and tranquility in border areas.
Raisina dialogue का नौवां संस्करण आज शाम से नई दिल्ली में शुरू।
Noted jurist Fali S. Nariman and eminent broadcaster Amin Sayani pass away.
और पुसान में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने इटली को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
And listeners, it's now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the International Mother Language Day. And it is celebrated on the 21st of February, that is today, to spread awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. India is home to hundreds of languages and thousands of dialects, which make it linguistic and cultural diversity the most unique in the world. And language is not only a means of communication, but also represents a diverse cultural and intellectual heritage. The world celebrates International Mother Language Day to promote linguistic and cultural diversity as well as multilingualism on February 21st every year. And in 1999, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, approved the idea of celebrating International Mother Language Day. And Priyanka, language is fundamental to communication. And Priyanka, it is crucial to respect, recognize and understand each other's language to effectively communicate. And you know, Priyanka, the world has plenty of languages, societies and customs. And every language likewise varies in dialects. With each couple of kilometers, the dialect transform and the language begins to contrast, and this is particularly so in a vast country like India. And I'm told that even in a big state like Uttar Pradesh, the dialect changes every few kilometers, isn't it?
जी हाँ, महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को शूल। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा किसी व्यक्ति की वह मूल भाषा होती है जो वह जन्म लेने के बाद सबसे पहले बोलता है। ये उसकी भाषाई और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का अंग होती है। महात्मा गांधी ने मातृभाषा की तुलना माँ के दूध से करते हुए कहा था कि गाय का दूध भी माँ का दूध नहीं हो सकता। और कुछ अध्ययनों में ये साबित हुआ है कि किसी मनुष्य के नैसर्गिक विकास में उसकी मातृभाषा में प्रदत्त शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। और वर्ष 1999 में आज के दिन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष का विषय है शिक्षा समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना।
Yes, Priyanka, and the beauty of the world's diversity as well as the ability to collaborate and connect with one another can appear confusing. And India remains as a seal of linguistic and cultural diversity for the world, with the kinds of dialects spoken nationwide. And the point, interesting point to note here, Priyanka, is that the development for International Mother Language Day didn't begin in India, it began in Bangladesh.
Mm-hmm.
And according to the UNESCO website, the day was established on the initiative of Bangladesh and has been observed worldwide since 1999. For societies to be sustainable, cultural and linguistic diversity is crucial. This day honored and remembered the historical language movement and the martyrs who gave their lives in Bangladesh in 1952. And this day, also known as Matri Bhasha Divas, is widely observed and celebrated. And let's also briefly touch upon the theme of the International Mother Language Day 2024. Well, the 25th edition of International Mother Language Day will focus on the theme Multilingual Education and Necessity to Transform Education. Multilingual education, a pillar of learning, and intergenerational learning are crucial for inclusive education and the preservation of indigenous languages. And by starting education the learner's mother tongue and gradually introducing other languages, barriers between home and school are bridged, facilitating effective learning. Multilingual education not only promotes inclusive societies but also aids in preserving non-dominant minority and indigenous languages. It is a cornerstone for achieving equitable access to education and lifelong learning opportunities for all individuals. So, Priyanka, we have talked about the theme for the International Mother Language Day. Well, Priyanka, we can see that the theme encourages indigenous languages to be preserved. And let me tell you what the UN stated. Well, the UN stated that by starting education in the learner's mother tongue and gradually introducing other languages, barriers between home and school are bridged, facilitating effective learning.
बिल्कुल, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन सका क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी। वैश्वीकरण के दौर में आज कोई भी देश, समाज, संस्कृति अपनी वैश्विक पहचान तभी स्थापित कर पाएगा जब वह मातृभाषा को अपनाएगा। और जब कोई बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम उसको जो पहले शब्द सिखाते हैं, जो घर में बोले जाते हैं, वो बच्चा शब्द सीखता है और उसको बहुत जल्दी से समझ भी जाता है। तो यही चीज है कि उसका इससे बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये समझने की हमें चीज है कि जो भाषा बच्चा बचपन से बोल रहा है और अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड तक उसको वो चीज पढ़ाई जाएगी तो उसका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा भी कहा गया है कि विश्व में लगभग 6,900 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से अगले 40 वर्षों बाद कई भाषाएं लुप्त हो सकती हैं। भारत में सबसे अधिक 1,652 भाषाएं बोली जाती हैं और 1,365 से अधिक बोलियां हैं, जो देश की समृद्ध भाषाई विरासत पर गर्व करने की बात है। और हमारे देश में भाषाई विविधता को लेकर कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी, लेकिन आज अनेक बोलियां लुप्त हो रही हैं जो चिंताजनक है। भारत में 10 भाषाएं ऐसी हैं जिनके जानकार भी 100 से कम रह गए हैं। इन भाषाओं में ज्यादातर भाषाएं मूल निवासियों द्वारा बोली जाती हैं जो असुरक्षित या विलुप्त हो चुकी हैं। और हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण पहल की गई है।
एब्सोल्युटली, एंड लैंग्वेजेस विद द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशंस फॉर आइडेंटिटी, कम्युनिकेशन, सोशल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। Yet, due to globalization processes, they are increasingly under threat or disappearing altogether. So when languages fade, so does the world's rich tapestry of cultural diversity, opportunities, traditions, memory, unique modes of thinking and expression, valuable resources for ensuring a better future are also lost.
और आपको ये भी बता दें कि हमारे जो असम राज्य है, इस साल से जब अप्रैल का उनका सेशन स्टार्ट होगा तो सरकारी स्कूलों में असमिया, बोडो और बंगाली भाषाओं में विज्ञान और गणित उनको इन भाषाओं में पढ़ाया जाएगा।
एब्सोल्युटली, एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट इन प्रिजर्विंग द मदर लैंग्वेजेस इन इंडिया। एंड एवरी टू वीक्स अ लैंग्वेज डिसअपीयर्स, टेकिंग विद एन एंटायर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। एटलीस्ट 45% ऑफ द एस्टिमेटेड 7,000 लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड are endangered. Only a few hundred languages have genuinely been given a place in education systems in the public domain, and less than 100 are used in the digital world. So multilingual and multicultural societies exist through the languages, which transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way. An International Mother Language Day is observed every year to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism. So on International Mother Languages Day, a thought to keep in mind that may our words bridge gaps and build bridges between communities. I would also like to mention here, Priyanka, that languages will evolve, and so it is important to adapt, keeping in mind the dynamic nature of a world.
और अब समय है अपने संवाददाताओं से जुड़ने का। तो सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं कोलकाता का.
यस, एंड कोलकाता मेट्रोज ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर इज फर्स्ट अप्रोचिंग कम्प्लीशन विद अ कमर्शियल रन अंडर द रिवर हुगली बिटवीन एस्प्लानेड एंड हावड़ा मैदान शेड्यूल्ड टू बिगिन एनी टाइम सून. वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट सुष्मिता मंडल.
Now only a small stretch between Esplanade and Sialda remains to be completed in around 5 months' time. The Sialda to Salt Lake Sector 5 stretch is currently operational, with train services in the much-anticipated Howrah Maidan Esplanade section to start once necessary clearances are obtained. The project faced significant delays, primarily due to the 2019 aquifer burst at Baubazar, causing ground subsidence and resultant collapse of buildings in the area. Subsequent water leakage incidents in 2022 further hampered construction work. The project is an engineering marvel, with a metro tunnel constructed beneath the River Hooghly. It is the longest underwater river tunnel of India, designed for metro rail service. The east-west metro underground portion is 10.8 km long, of which 520 meter stretch of tracks goes under the river. The total route length is 16.6 kilometers, having 17 stations in all. The tunnel was completed in 2021 and was constructed by Kolkata Metro Rail Corporation Limited. Built at a cost of rupees 10,000 crores, the project boasts of having the deepest metro station in India, the Howrah station being 33 meters under the surface. Once completed, the project will connect the two of the busiest stations of the Indian Railways, namely Howrah and Sialda, and will bring relief especially to Delhi train commuters coming from the suburbs, avoiding the busy Howrah bridge as the metro zips under the river in just 60 seconds. Sushmita Mondal from Akashvani, Kolkata.
तो कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट मेट्रो गलियारा किसी भी समय चालू हो जाएगा और इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी. वैसे सुविधा तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को हुई. उत्तराखंड में ये यात्रा राज्य के सभी 7,795 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है. इस यात्रा की शुरुआत 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस पर हुई थी. 20,30,000 से अधिक जो लोग हैं उन्होंने राज्य में इस संकल्प यात्रा में उन्होंने भाग लिया और कई सुविधाओं का लाभ उठाया. क्या हुआ इस यात्रा के दौरान और क्या क्या लाभ मिले लोगों को, आइए सुनते हैं संजीव सुंदरियाल की इस रिपोर्ट में.
द अनवेवरिंग एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड टुवर्ड्स द ऑनगोइंग विकसित भारत संकल्प यात्रा हैज इंस्पायर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडिशनल प्रोग्राम्स अक्रॉस द स्टेट. ओवर 20,30,460 इंडिविजुअल्स हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट्स, विद नोटेबल 3,06,000 हेलिंग फ्रॉम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मार्किंग द डिस्ट्रिक्ट रिमार्केबल एंगेजमेंट इन द इनिशिएटिव. इन वेरियस प्रोग्राम ओवर 12,00,000 पीपल हैव plus to contribute to India's development by 2047. Additionally, 19,964 beneficiaries shared their stories under Meri Kahani Meri Jawani to avail the benefits of varied government schemes in the state. 11,298 farmers have registered for Kisan Credit Card, 30,740 for security insurance, whereas 23,522 for Jeevan Jyoti, and 20,601 eligible beneficiaries have registered for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. संजीव सुंदरयाल, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून.
The Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi has been held at 11 venues in Guwahati and providing nutritional diet to the over 3,500 athletes from all corners of the country is a challenge to the kitchen staff. We have more from our correspondent Animul Haq.
Every one of us loves to eat tasty foods, but for athletes, nutrition is a crucial factor determining their progress in their professional careers. The Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi are being held across 11 venues in Guwahati, presented a challenge to the kitchen staff responsible for the task of providing nutritional diet to the over 3,500 athletes from all corners of the country. Also keeping in mind their taste buds, the food menu is a standardized one for athletes available across the venues and their places of accommodation. Approved by nutritionists from the Sports Authority of India, the menu is a fusion of cuisines catering to the diverse regions from where the athletes assembled in Guwahati, the gateway to the Northeast. The menu has been planned in such a way that the meals are nutritious and healthy, keeping in mind the diet and requirements of players. The cuisine includes Karnataka's holis to Rajasthan's ghewar to provide at least the flavor of India. Aminul Haq Zuddar, Akashvani News, Guwahati.
will take you on a tour around India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We, the people of India.
On the 21st of February 1948, the draft constitution of India was submitted to the President of the Constituent Assembly by the drafting committee. The committee had received a draft constitution 4 months earlier, prepared by the Assembly's constitutional advisor B.N. Rao. Rao's draft reflected the decisions taken by the Assembly on the reports of various committees that were tasked with drawing up constitutional provisions on specific parts of the constitution. The drafting committee, between October 1947 and February 1948, scrutinized, tweaked and added to Rao's draft, and what emerged from this process was the draft constitution of India 1948.
The draft constitution consisted of 315 articles, organized around 18 parts and 8 schedules. It covered a range of topics including the structure of government, rights and center-state relations, etc. This draft constitution was the first blueprint of the Indian constitution that was publicly available. It was widely circulated to the members of the assembly, provincial governments, central ministries, the Supreme Court and High Courts, and the general public, along with an invitation to provide feedback and suggestions.
The drafting committee reviewed and took decisions on comments it received and prepared amendments. Such democratic exercises of consultation and consensus amongst the members and people of India helped make the largest written constitution of the world, the Constitution of India.
We remember freedom fighter Birendranath Dattagupta, who was martyred on the 21st of February 1910. Born in 1891 in district of Dhaka, now Bangladesh, Datta was a member of the Anushilan Samiti. In the early 1909, he was sent by Bagha Jatin to receive arms training in the Sundarbans under the supervision of Satish Bose. After returning to Calcutta, he shot DSP Khan Bahadur Shamsul Alam, the prime investigator in the Alipur bomb case, on the 24th of January 1910 in the corridor of the Calcutta High Court. Birendranath was chased and arrested by the police. He died on the gallows in the Presidency Jail on the 21st of February 1910. We salute the great martyr.
We also remember martyr Chand Sukur. On the 21st of February 1947, during the Tibhaga movement in Dinajpur, now in Bangladesh, the police entered the Thumnia village in Dinajpur in search of Doma Singh, a leader of the Kisan Sabha. The peasants assembled in front of Doma's house to resist the arrest of their leader. Sukur Chand rushed towards the police with a lathi in his hand, followed by his wife. The police opened fire, and both Sukur Chand and his wife died on the spot. We salute the great martyrs.
We remember freedom fighter Mahipal Singh from Bhagalpur district, Bihar, who actively participated in the civil disobedience movement of 1930. On the 15th of February 1932, Mahipal joined around 4,000 people around the Tarapur police station to celebrate Jhanda Satyagraha Divas. The police warned them to disperse and then opened indiscriminate firing. Mahipal Singh was critically injured and succumbed to his injuries on the 21st of February 1932.
In some business news today, the key domestic indices ended more than 0.5% lower amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex lost 434 points or 0.59% to finish at 72,623. The NSE Nifty fell 142 points or 0.64% to settle at 22,055. In the forex market, the Indian rupee today ended at 82 rupees and 97 paise against the US dollar.
और अब खेल मैदान का रुख करते हैं। एफआईएच पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज शाम 7:30 बजे ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इससे पहले भारत ने नीदरलैंड को 2-2 से मुकाबला ड्रॉ होने के बाद शूटआउट में 4-2 से हराया था। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम विश्व सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी।
Yes, in the World Table Tennis Team Championships 2024, the Indian women's team beat Italy 3-0 to storm into the pre-quarterfinals of South Korea's Busan today. Manika Batra, Srija Akula and Aihika Mukherjee, who led India to victory against Spain yesterday, were crucial to the team's triumph against Italy. Batra and Akula won their respective matches 3-0, while Mukherjee dropped just one set, winning 3-1 to help India qualify for the round of 16. On the other hand, the Indian men's team, who defeated New Zealand 3-0, advances to the round of 32 to face Kazakhstan. Harmit Desai and Satyan Ganeshekaran dominated the respective clashes with a tie, while Manush Shah fought hard to seal the game. And the quarter-finalists in both men's and women's categories will qualify for the 2024 Summer Olympics in Paris. And also the 17th edition of the Indian Premier League IPL will begin from March 22nd. IPL Chairman Arun Dhumal said that the schedule of the first 10 days will be announced initially, while the roster for the remaining games will be announced once the dates for the general elections are made official.
और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं।
Yes, and Amin Saini passed away. He was a radio announcer. He achieved fame and popularity all across the Indian subcontinent when he presented his Binaka Geetmala program of hits over the airwaves of Radio Ceylon. He was one of the most imitated announcers even today. His style of addressing the crowd with Behno or Bhaiyo, as against the tradition Bhaiyo or Behno, is still treated as an announcement with a melodious touch. He had produced, compared or spoken for over 54,000 radio programs and 19,000 spots and jingles since 1951. Amin Saini was introduced to All India Radio Bombay by his brother Hamid Saini. Amin participated in English programs there for 10 years. Later, he helped popularize All India Radio in India. Saini was also part of various movies throughout the years like Bhoot Bangla, Teen Deviya, Boxer and Katal. He appeared in all these movies in the role of an announcer in some event.
अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है सुना जरा।
दही अब
बहनों और भाइयों, आज एक खास अहमियत और शान के साथ बजा है दुनिया के सबसे मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीतमाला का ये संगीत, क्योंकि आज आपका दोस्त अमीन सायानी आपके लिए पेश कर रहा है।
जी हाँ, नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। 42 साल तक अपने शानदार अंदाज और आवाज से रेडियो पर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। आपको पता है कि जो गीतमाला शो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता था हर बुधवार को, उसका आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे और फिर गूंजती थी एक आवाज, बहनों और भाइयों। तो ये आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।
Yes, and Fali Sam Nariman passed away today. He was an Indian jurist. He was a senior advocate to the Supreme Court of India from 1971 and was the president of the Bar Association from India from 1991 to 2010. Nariman was an internationally recognized jurist on international arbitration. He was honored with the 19th Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration in 2018, and he was one of India's most distinguished constitutional lawyers and argued several leading cases. He was the additional Solicitor General of India from May 1972 to June 1975, and he was awarded the Padma Bhushan in 1991, Padma Vibhushan in 2007, and the Gruber Prize for Justice in 2002, and was a nominated member of the Rajya Sabha, the upper house of Parliament of India, for a term 1999 to 2005.
देश आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो इसमें उन वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है जिन्होंने स्वाधीनता के बाद देश को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा बल्कि उसे साकार भी किया। देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में डॉ शांति स्वरूप भटनागर का अहम योगदान रहा है। आज उनकी जयंती है। डॉ भटनागर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के संस्थापक निदेशक थे जो स्वतंत्र भारत में अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्था बन गई। उन्होंने कई वैज्ञानिक शोध किए। मैग्नेटो केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ इमल्शन के क्षेत्र में उनके शोध को व्यापक मान्यता मिली। 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना स्वतंत्रता के बाद उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको ये बता दें कि उनकी स्मृति में 1957 में CSIR ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
Om Prakash Chibbar passed away on his day in 1998. He was a film actor. He was born in Jammu and was a well-known character actor of Hindi cinema. His most well-known movies are Gopi, Halchal, Namak Halal and Sharabi. He also produced Jahanara, starring Bharat Bhushan, Shashikala, Prithviraj Kapoor and Mala Sinha playing the title role. Prakash has played in many comedy films. One of his best performances were in Naukar Biwi Ka in 1983, Sharabi 1984 and Chameli Ki Shadi, where he played a pivotal role. His role in Gopi with Dilip Kumar is considered best in terms of acting, and critics still think he gave better performance in tragic scenes in front of Dilip Kumar. And let's go ahead and listen to a dialogue from one of his movies.
अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है, सुना जरा।
दसी आप मेरा मजाक उड़ा रहे क्या?
अरे नहीं रे, मैं भी तो देखूं तेरी खोपड़ी में क्या है, सुना कहानी। चल क्या सोच रहे हो?
दरी अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो आप फिल्म बनाने के लिए रुपया देंगे?
ये पहले कहानी को सुना, रुपये की बात बात नहीं करो।
दरी मेरी कहानी बहुत भयानक और डरावनी है।
और अब आगे बढ़ते हैं, साहित्य के क्षेत्र में चलते हैं। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद करते हैं उनकी इन पंक्तियों के साथ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, जी हां, महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज भी न जीवंत रचनाओं के जरिए हमारे बीच हैं। आज उनकी जयंती है। निराला छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया और हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने जूही की कली, संध्या सुंदरी जैसी कविताओं में अपनी छायावादी प्रकृति का परिचय दिया। वहीं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी उदात्त भावों से पूर्ण महाकाव्यात्मक कविताओं का सृजन किया। और आज ही उर्दू के प्रसिद्ध शायर मुंशी अमीर अहमद मीनाई की भी जयंती है। दाग दहलवी के समकालीन अमीर मीनाई अपनी गजल सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि अमीर मीनाई के कहने के अंदाज में सिर्फ तलखी ही नहीं बल्कि शायरी की खूबसूरत नजाकत भी है। उनका कलाम अगर देखें तो उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं, ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी ना सकूं। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। जी हां, अमीर मीनाई की शायरी की सबसे बड़ी खासियत है उसकी भाषा। अवधि उर्दू जबान का अद्भुत संगम उनकी शायरी में झलकता है।
Yes, Nina Simone was also born on this day in 1933. She was an American singer, songwriter, pianist, composer, arranger and civil rights activist. Her music spans styles including classical, folk, gospel, blues, jazz and pop. Let's listen to a bit of a song, Here Comes the Sun.
Here comes the sun, little darling, here comes the sun.
So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us. Till the next time, this is Priyanka Arora and me, Abhishek Mukhopadhyay, signing off. Bye and
Namaskar.
Namaskar.